तो हम अभी चौमोहा धाम में बैठे हैं। आज 30 मार्च का दिन है, बसंत पूर्णिमा का दिन है। ब्रज में तो हर दिन पवित्र होता है, लेकिन कुछ दिन पवित्र होते हैं, कुछ दिन अधिक पवित्र होते हैं, कुछ दिन अधिक अधिक पवित्र होते हैं, कुछ दिन पवित्रोत्तम होते हैं। यही ब्रज का सब जैसे है ना कि कुछ चीज़ मीठी होती है, कुछ चीज़ बहुत मीठी होती है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है, कुछ चीज़ बहुत ही परम मीठी होती है। तो मिठास में भी कोई ऐसा क्या कहते हैं उसको, कोई स्थिर बात नहीं है। मिठास भी ऐसी बढ़ने वाली और बढ़ने वाली है, वृद्धि होने वाली है। तो वैसे जिस दिन हमारी चेतना सही जगह पर है उस दिन सब धामवासी है, जिस दिन हमारी चेतना कहीं और है धामवास समाप्त हो जाता है। धामवास अपनी चेतना पे डिपेंड है, धामवास कोई जगह पे डिपेंड नहीं है। हम अमेरिका के सबसे भयंकर जगह में रह के भी धामवास कर सकते हैं। कैसे? मन से ब्रज में रहते हुए ब्रज भाव को जहाँ अपनाते हैं वही ब्रजवास है। ब्रजवास, ब्रज प्रेम, ब्रज भावना, कृष्ण भावना जहाँ पर भी है वो जगह पर हमारा ब्रजवास हो रहा है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, जो दिव्य बातें होती हैं, वो किसी भी स्थान पर या किसी भी भौतिक वस्तु पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे हम दुबले हैं या हम गोरे हैं या हम ब्राह्मण कुल के हैं या हम शूद्र कुल के हैं या हम अग्रवाल हैं या हम कोई फलाना है, कोई और कोई है, साउथ इंडियन है, इन सब चीज़ों पर आध्यात्मिक वस्तुएँ और चीज़ें जो हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं, उस पर निर्भर रहती नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति एक साथ पर मुश्किल भी है और एक साथ में आसान भी है। मुश्किल यह है कि अगर ये बातें हम लोग सोचने लगेंगे तो भक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। अरे हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो ऐसे फलाना कुल में है, हमारा ऐसा है, अरे तो हम गोसाई हैं। हर चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आसान बात अगर इन चीज़ों का प्रभाव हम पर नहीं है तो भक्ति बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से भौतिक वस्तुओं पर भक्ति निर्भर नहीं है। शरीर से हम यहाँ पर हैं तो सोचे कहाँ नहीं अभी हमारा धाम वास हो रहा है। जब हम VIPC में काम करते हैं तो लगता नहीं कि वहाँ धाम वास हो रहा है, तो नौकरी हो रही है। ये ऐसे होता है क्योंकि हमारा भाव वहाँ बदल जाता है, वहाँ पर हम किसी भावना से चले जाते हैं, किसी हेतु से चले जाते हैं, तो फिर वो धाम का निवास बदल जाता है। स्थाई नाम धाम निवास तो है ही, लेकिन फिर भी उसका लाभ में 50%, 20%, 10%, 75%, 100%, 0% ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा चेतना जो है यहाँ से वहाँ होता ना वो गोलक क्या कहते हैं उसको, पेंडुलम, यहाँ से वहाँ ऐसे दौड़ते रहता ना, कभी भौतिक दुनिया में, कभी आध्यात्मिक दुनिया में, कभी भौतिक दुनिया में, कभी आध्यात्मिक दुनिया में, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको स्थिर रहना चाहिए। जो स्थिर रहता है उसी को लोग संत कहते हैं। संत वही है जो स्थिर रहता है किसी भी स्थिति में, किसी भी वातावरण में, उसकी भावना में अंतर नहीं आता है, हर समय भगवान से जुड़ा रहता है वो। ऐसा एक धनी आदमी था बहुत, तो वो एक संत को मिलने आया। तो उसने कहा, महाराज जी आप तो बड़े हमेशा संतुष्ट लगते हैं, आत्माराम लगते हो, संतुष्ट समाधान आप तो एकदम बढ़िया लगते हो हमेशा, हम तो हमेशा चिंतित रहते हैं। आपके पास कोई धन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई गाड़ी बंगला नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, क्या रहस्य क्या है इसका? बाबा बोलते हैं, अरे मूर्ख तू मुझे रहस्य की बात कर रहा है, तो 7 दिन में मरने वाला है, ये सब क्या पूछते बैठा है, 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है। अच्छा, तुरंत प्रश्न को भूल जाता है वो, क्या प्रश्न पूछता उससे, जो प्रश्न पूछ रहा था बड़े चाव से वो प्रश्न को भूल जाता है। अभी क्या करें महाराज जी, बताओ कुछ उपाय बताओ। जाओ 7 दिन के बाद लौट के अभी बताएंगे क्या करना है। जब बड़ा दुखी हो गया, घर गया आपने तो पत्नी से मिला, बच्चों से मिला, पड़ोसियों से मिला, मित्रों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, यहाँ गया, उधर गया, किसी से माफ़ी मांग के आया, किसी से धन्यवाद करके आया, किसी से कुछ करके आया, हाँ तो वसीयत लिख दी नाम सबके, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर कर दी, सब कुछ बांट लिया और आ गया 7 दिन के बाद। बोले आ गए? हाँ, अभी आपने कहा था 7वां दिन में मरना है इसलिए आया आपके पास। अभी कैसा लगता है आपको? बड़े बड़ा हल्का लगता है अभी, बिल्कुल दिमाग शांत हो गया एकदम, कोई परेशानी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बोले कुछ तुम मरने वाले नहीं हो, ये तुमने पूछा था रहस्य क्या है, ये रहस्य है इसका। क्योंकि आज तुम सब बंधन छोड़ के आए हो, और तुम्हारा मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए आज तुम निश्चिंत हो, एकदम आराम से रह रहे हो। और हम लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के बन के रहते नहीं है, उसके बन के रहते हैं, इसलिए और किसी चीज में आसक्ति नहीं है और हर दम में मरने को तैयार है। आज तुम कैसे हो, रेडी हो मरने के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हो, सब कुछ अपना जो भी किसको बांटना है देना है सॉरी बोलना है, दिल को और मन को शरीर को मुक्त करके आए हो, अभी जाने को तैयार हो ना, अभी आओ एकदम, कोई बंधन नहीं है अपने मन में। अभी हम लोग ऐसे रहते हैं, हमेशा मुक्त रहते हैं, हमेशा किसी चीज बनते नहीं अपने आप को। तो उसी तरह से अगर हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के बन के न रहेंगे तो हम भी ऐसे रह सकते हैं, और दुनिया में कहीं भी रहेंगे लेकिन उनसे जुड़े रहेंगे तो धाम में ही रहेंगे, जहाँ भगवान हृदय में है वही धाम है। सब संत लोग हृदय में भगवान को लेकर डोलते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं, क्योंकि भगवान उनके साथ में चल रहे हैं। जहाँ भगवान साथ चल रहे हैं भगवान का धाम उनके साथ में चल रहा है, भगवान तो परिपूर्ण है, जहाँ वो रहते हैं उनका धाम भी उनके संग चलता है। जो हृदय में वो निवास करते हैं वो हृदय भगवान का धाम है, जो हृदय हम लेके चल रहे हैं हम छाती के अंदर तो धाम में चल रहे हैं ना, ये धाम का निवास का रहस्य है। चाहे हम घर गृहस्थी कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई धन कमा रहे हैं, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और कोई अपना बिजनेस चल रहा है, उसमें अगर ये भावना में जुड़े रहेंगे अंदरी स्तर पर तो हमारा जीवन धन्य है। तो उस आदमी को जवान बूढ़ा पति पत्नी कुछ होने का जरूरत नहीं है, वो हर अवस्था में भगवान से जुड़ा रहता है, और जितने हद तक हम उनसे जुड़े रहते हैं उतने हद तक दुनिया से विभक्त रहते हैं, और जितने दुनिया से जुड़े रहते हैं भगवान से विभक्त रहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी आसक्ति वहाँ पर है उतनी यहाँ कम है, और जितनी यहाँ पर है उतनी वहाँ पर कम है, सीधी सी बात है एकदम। और ये सब जो है कीड़े मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा जी से भी लागू है। आप चाहे ब्रह्मदेव का जन्म लो, क्योंकि ब्रह्मदेव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। जैसे डायरेक्टर जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। कोई आदमी उसको पद को ले लेता है और उस पद का कार्यभार संभालता है, पद की जिम्मेदारी संभालता है, तभी हम बोलते डायरेक्टर साहब आ गए, लेकिन उसका नाम डायरेक्टर नहीं है, उसका नाम कुछ और होता है। तो वैसे जीव जो है वो अपनी क्षमता से गुणवत्ता से अपनी योग्यता से ब्रह्मदेव भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है। इंद्र भी कोई पद का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं, पद का नाम है इंद्र पद। वायु भी कोई व्यक्ति का नाम नहीं, वायु पद है, वायुदेव। कोई जीव उस पद को अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर लेता है, अपने गुण कर्मों के अनुसार। अगले जन्म में ठाकुर जी उसको इंद्र बना सकते हैं। हाँ, बलि ने भी प्रयास किया था ना, क्या प्रयास किया था, पहले इंद्र का राज्य हड़प लिया था, फिर इंद्र पद पर बैठने का प्रयास किया उसने, मान्यता से एकदम, ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं, सब देवता मान्य करेंगे हम इंद्र हैं, तो सवयज्ञ किए उसने, मतलब बलि के लिए भी इंद्र बनना मुमकिन था क्योंकि इंद्र पद है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये सारे जो नियम है भगवान के बंधन के और भगवान के प्रेम के, ये सभी जीवों को लागू है। जितने हद तक ब्रह्मा जी भगवान से मिले हुए हैं वो भगवान के भावना में लीन हो गए वो, और जिस हद तक अपने ऐश्वर्य में और आपके पद के अधिकार में और पद की क्षमता में और पद के प्रभाव में लगे रहेंगे उतने भगवान से दूर है वो। सब स्थिति में लागू है ये नियम, हमको भी लागू है उनको भी लागू है, और हम तुच्छ जीव होने पर भी उनसे अगर 100% जुड़े हुए हैं तो सब श्रेष्ठ स्थिति है हमारी। और ब्रह्मा बनकर भी अगर आप कोई स्थिति में जुड़े हुए नहीं हो तो हमारी बेकार स्थिति है। इसी को कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि, मतलब किसी भी स्थिति के अंदर क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है समझना, इसी को सत्सद विवेक बुद्धि कहते हैं। सारा सार, सार असार विवेक बुद्धि भी कहते हैं। विवेक का मतलब वही है, समझना कि किस अवस्था में क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है। तो ये ब्रह्मा जी का स्थान है। हाँ, सबसे पहले बता देता हूं कि ये पश्चाताप की जगह है सब लोगों के लिए। हाँ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो और कितना भी छोटा आदमी हो, जब तक हृदय में सही रूप में पश्चाताप की भावना नहीं आती है तब तक भगवान की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग अपराधी हैं। हाँ, जो लोग जो जीव यहाँ पर शरीर धारण करके और डोल रहा है, बड़े छान से डोल रहा है, ये शरीर जो है ये अपराध का प्रूफ है। अगर अपराध नहीं होते तो शरीर नहीं होता, भगवत धाम में होते हम लोग और दिव्य देह को प्राप्त करते वहां पर डोलते हम लोग। इसलिए इस शरीर में रहकर हम लोग जी रहे हैं तो कोई गर्व करने की कोई बात नहीं है। ये शरीर हमारे अपराध का एक लक्षण है, एक प्रतीक है। हाँ, समझो अगर कोई दाग होगा यहाँ पर कोई, बोले वाह कितना बढ़िया दाग है, देखो कितना सुंदरता का लक्षण है, नहीं वो कैंसर का लक्षण है, शरीर में कैंसर फैल रहा है, इसका निशानी है ये। बार बार जब आईने में देखोगे तो याद आएगा, अरे वो कैंसर है, शरीर में फैल रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक जगह दिखाई पड़ रहा है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। उस तरह से मनुष्य शरीर को लेकर हम इतने गर्व से डोलते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन ये भी हमारे पाप का ही प्रतीक है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो अपने आप को कितना सज्जन मानता होगा, कितना भक्त मानता होगा, परोपकारी मानता होगा, कल्याण करने वाला मानता होगा, लेकिन जब तक शरीर है तब तक केवल वो पाप का ऋण ही निकाल रहे हो, क्योंकि जब पाप खत्म हो जाते हैं तो शरीर बचता नहीं है, वो तो दिव्य बन जाता है। संतों का शरीर होता है वैसे, उसको जलाते नहीं, दफनाते हैं उसको। जैसे लोहा का सली जो है वो आग के संपर्क में अगर बहुत देर रहता है तो उसके बाद वो आग का ही काम करता है, लोहा होना उगल जाता है, वो लोहा होने से कोई उसका परिणाम नहीं होता है, आग की तरह काम करता है वो। सान्निध्य से, भगवान के भक्तों के संग से और भक्त भगवान की भक्ति के सान्निध्य से उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। तो बड़ी लंबी कहानी है ये ब्रह्मा जी की यहाँ पर, लेकिन ब्रह्मा जी के भाव को समझना चाहिए हमको, वो हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे कहानी को छोड़कर। क्योंकि ये ब्रजभूमि जो है ना, ये भी एक व्यक्ति है, पर्सन, हाँ व्यक्तिमत्व है ये ब्रजभूमि। ये भगवान की शक्ति है लेकिन ये भी एक व्यक्ति है, भगवान के संपर्क में आई हुई हर एक चीज वस्तु जो है वो व्यक्ति होती है। यहाँ का जो कण कण का जो रज है वो भी व्यक्ति है, चेतन है, जड़ नहीं है। भगवान के धाम में हर जो रज कण जो है वो भी चिंतामणि है, उसको भी इच्छाएं हैं, उसको भी भावना है, उसको भी आदान प्रदान की इच्छा है, उसको भी प्रेम और दुख का अनुभव होता है। ये भगवान का धाम की विशेषता है। तो जिस जगह पर हम जाते हैं दर्शन करते हैं, चलो भाई गए, मत्था टेका, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, फूल चढ़ाया, दंडवत दिया, दक्षिणा दिया, थोड़ा प्रसाद पाया, थोड़ा इधर डोले, चले गए, ये भी अच्छा है। लेकिन उस धाम का दर्शन तब होगा जब उस धाम के अंदर जो भाव प्रकट हुआ है उस भाव को हम समझेंगे, तभी हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति थी धाम के रूप में उसका सान्निध्य पूरा हुआ हमारा, समझ गए हम लोग उसके मन में क्या बात है, किस भाव से ये धाम यहाँ प्रकट हुआ है, यहाँ पर लीला करके कौन सा भाव प्रकट हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी। इसलिए हम कहीं भी जाएंगे, आगे छोटे ग्रुप में जाएंगे, हजार लोग को लेके जाएंगे, फिर भी जहाँ पर भी जाएंगे उस धाम का जो सार है उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ का जो सार है वो पश्चाताप की भावना है। हमने समझो किसी का अपराध किया, हमने कुछ बुरा बोला, आपको बोल दिया, आपको बुरा लगा बहुत, तो साहब ने बोला जाओ सॉरी बोल के आओ, उन्होंने कहा करो जी सॉरी, आप जानते हैं कि दिल से नहीं बोल रहे हैं, एक रिवाज कर रहा है वो, बोला गया उसको, बोलना पड़ेगा इसलिए बोल रहा है वो। तो आप समझ जाएगा ना कि भाई ये तो हृदय से नहीं बोल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। हम भी समझ जाते हैं, हम जैसे मामूली आदमी समझ जाते हैं कि आदमी हृदय से नहीं बोल रहा है सॉरी। तो भगवान की दृष्टि से क्या है, सत्य क्या है, कि जब तक हम हृदय से पश्चाताप की भावना लेकर नहीं जाते हैं तब तक भगवान की ओर से हमको माफ़ी नहीं मिलती है। आप चाहे बड़े बड़े आदमी होंगे, भले आदमी होंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई चलो माफ़ कर दिया आपको। भक्त लोग ऐसे होते हैं, उनका अपराध करने के बाद में वो अपराध लेते नहीं है, लेकिन वो भी भले आपको माफ़ करे लेकिन भगवान ने माफ़ करते हैं। जब तक सही रूप से पश्चाताप की भावना हृदय पर उत्पन्न नहीं होती है तब तक सही माफ़ी हमको नहीं मिलती है। ब्रह्मा जी की महानता यही है, ब्रह्मा जी होने पर भी उन्होंने वो पश्चाताप किया, इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त किए उन्होंने। अपने मन को डिस्ट्रैक्ट मत कर देना, एक ही जगह रखना। और जितना आदमी बड़ा बनता है ना, जितना बड़ा अधिकारी बनता है उतना सॉरी बनना मुश्किल होता है उसको। समझो मैंने किसी आपको किसी का अपराध किया तो मुझे आपको सॉरी बोलना में बहुत कष्ट होगा, अरे मैं तो डायरेक्टर हूँ, आप तो कर्मचारी हो, मैं कैसे सॉरी बोलूँगा आपको, मतलब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हाँ, जितना टोपा बड़ा पहना हुआ है उतना सर भारी हो जाता है, उतनी कठिनाई बढ़ती है हमारी। जितना आदमी सामान्य रहता है उतना वो अब बढ़िया रहता है, कोई गर्व नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है। जैसे ब्रजवासियों को भगवान ने कैसा रखा है, कोई उनको सुंदरता नहीं दिया है, कोई धन नहीं दिया उनको, कोई बड़ा विद्या नहीं दिया उनको, कोई बड़ा शरीर सुंदर काला गोरा ऐसा कोई सुंदर शरीर नहीं दिया उनको। क्यों दिया ऐसे भगवान ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को गर्व ही नहीं हो, जो मेरे प्रिय हैं उनको गर्व की बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने उनको ऐसे रखा है ब्रजवास में। और कैसे रखा है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत कड़ा तापमान, कठोर वातावरण, मतलब जो सही रहेगा, सही होगा वही रहेगा यहाँ पर, बाकी सब भाग जाएंगे अपना अपना ढूंढ लेंगे आसरा, कहीं ठंडक है वहां पर हमारे जैसे। हाँ, ये सब इसलिए बनाया है क्योंकि जो धाम को महत्व को समझे, समझ सकता है वही यहाँ पर टिकेगा। जो धाम की महत्ता को समझेगा, धाम का गौरव समझेगा, वही यहाँ पर रहने की इच्छा करेगा और रह भी लेगा और सहन भी कर लेगा जो भी करना है। क्योंकि जब उसको यहाँ की वस्तु की कीमत पता चलती है तो वो जो कीमत अदा कर रहा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो वस्तु मिल रही है उससे बहुत कीमती है। ये जानकार जब उसको होती है तब भी वो रह पाता है यहाँ पर। तो सीक्रेट क्या है यहाँ पर रहने का, अगर यहाँ का जो गौरव है उसको आप समझ रहे हो, उसकी महानता को, तब आपको ध्यान में आएगा कि जो भी मैं सहन कर रहा हूँ उसकी कीमत कुछ नहीं है। तो आप बड़े आसानी से रहोगे यहाँ पर कि मुझे जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा बहुत कम कीमत वाला है। मेरा त्याग और मेरी सहनशीलता जो है वो थोड़ी सी कीमत है उसकी, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो वही आदमी यहाँ पर सालों साल निवास कर सकता है, यहाँ ही यहाँ जन्मा हुआ या बाहर से आया हुआ। इसलिए चेतना महाप्रभु कहते हैं कि चेतना से हमको निष्किंचन रहना चाहिए। चेतना से मतलब क्या, भावना से। पावर्टी मतलब क्या, धन की पावर्टी नहीं, शरीर की पावर्टी, नोट की पावर्टी नहीं, नोट की गरीबी नहीं, हृदय की गरीबी होनी चाहिए। मतलब कैसे, जिसको कोई गर्व नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, वो दीन होता है, जिसको किसी चीज़ का अहंकार नहीं होता है, वो दीन हृदय को ही भगवान देखने को आते हैं, उस दीनता की ओर ही भगवान आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भी आने उन्होंने कृपा किया, क्योंकि ब्रह्मा जी इतने बड़े होते, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, हम लोग अपने अपने पद पर बहुत ऐड करते हैं, है ना, बड़े शांत से चलते हैं, लेकिन पद के हिसाब से भी, पावर के हिसाब से भी, बुद्धि के हिसाब से भी, धन के हिसाब से भी, अधिकार के हिसाब से, मान सम्मान के हिसाब से, आप कोई भी हिसाब लगा लो दुनिया का, वो सभी हिसाब में ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, प्रपितामह है, वो कोई टिकने वाला उनके सामने, इतने बड़े हैं वो। हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ होता है ना तो हम कितना अहंकार करते हैं, कोई नई गाड़ी ले लिया छोटी सी तो बोलते हैं देखो कितना गर्व करते हैं, लेकिन हर दृष्टि से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। और वो ब्रह्मा जी इतने दीन बने यहाँ पर, इतने दीन बने, इतने पश्चाताप किया उन्होंने, भगवान ने पर ऐसी कृपा की कि ब्रह्मा के पद से उनको हटा दिया उन्होंने और गौर लीला के अंदर हरिदास ठाकुर बना दिया उनको। अब बोले अरे यवन बना दिया उनको, हाँ म्लेच्छ यवन कुल में जन्म दिया उनको, मांस खाले वाले घर के अंदर, तो क्या बड़ा कृपा किया उनके पर। उन्होंने मांगा था यहाँ पर कि ये बड़ा जो पद है ना मेरा ब्रह्मा का, ये बहुत बड़ा गड़बड़ काम है, पूरा बहुत ज़्यादा गर्व होता है इसके अंदर, अधिकार के अंदर आदमी दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और सत्य को भूल जाता है। ये पद का वगैरह क्या परिणाम होता है, जब कोई बड़ा पद आता है, बहुत शक्ति हमारे अंदर आती है ना, तो हम सत्य को पहचानने में भूल जाते हैं, सत्य को नहीं पहचान पाते हैं, सत्य से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो माया का प्रभाव होता है पद का और शक्ति का, वो दुनिया को देखने में हमको भ्रष्ट कर देता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, क्योंकि इसी पद के वजह से मैंने आपके लीला में भंग डाला। सब ग्वाल बाल बैठकर भगवान के साथ जमुना जी के किनारे में आनंद ले रहे थे, है ना, कभी आनंद ले रहे थे वो जैत नाम का गांव जो है वहां पर अगासुर का वध किया था। ये जैत नाम कैसे बनाया है, भगवान ने जब अगासुर का वध किया तो सब लोगों ने जयति 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 ऐसे पुकारा, जयति 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 जयत 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 हो गया, फिर वो अब ब्रंच हो गया उसका। तो उस गांव में भगवान ने अगासुर का वध किया। अभी अगासुर इतना भयंकर राक्षस था, उसकी छोटी सी कहानी है गर्ग संहिता में आती है। वो एक राक्षस, एक देवता राक्षस था वो, पहले मतलब देवता के समान शक्तिशाली था। तो अष्टावक्र मुनि को मिलता है एक बार, वो अष्टावक्र मुनि जो है ना उनके आठ जगह पर शरीर में उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, वक्रता है, मतलब डिफॉर्मिटी है, मतलब है ना टेढ़े शरीर है उनके आठ जगह पर, ऐसे जानवर की तरह चलते थे वैसे ऐसे एकदम, लेकिन बहुत विभूति महान विभूति थे वो। तो उनके देखकर ये सुंदर शरीर वाला जो राक्षस था वो हंस पड़ा, अरे क्या है तुम देखते हो। तो अष्टावक्र मुनि समझ गए कि इसको रोग है, अष्टावक्र मुनि के अंदर वक्रता है, लेकिन वो सब रोगों से मुक्त है, भव रोग से मुक्त है वो, और ये तो शरीर के रोग से मुक्त है लेकिन भव रोग से बंधा हुआ है, बोले रोगी व्यक्ति है, इसको इलाज करना चाहिए उसका। तो सांप देते हैं उसको, तुम्हें अपने रूप पर बड़ा गर्व है तो तुम सांप बन जाओ। वो तुरंत अजगर बन गया, जैसे ही वो सुंदर रूप निकल गया और अजर का बहुत भयंकर रूप आया आ गया, तो एकदम होश आ गया उसके अंदर, हाँ एकदम होश में आया, अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, माफी चाहता हूँ, क्षमा करो, कुछ इलाज करो, कुछ उपाय करो, कुछ माफी करो, कुछ उपाय बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो है उद्धार जो है वो ठाकुर जी स्वयं करेंगे, जब ठाकुर जी आएंगे तो आपके उनके हाथों से आपका वध होगा, तब आप दिव्य धाम में चले जाओगे। संत लोग कभी भी किसका बुरा नहीं करते, हाँ नारद मुनि ने भी श्राप दिया था कुबेर के पुत्रों को, लेकिन श्राप की वजह से उनको भगवान के दर्शन हुए। ये श्राप की वजह से अगासुर को भगवान के दर्शन हुए, जिनके दर्शन मात्र से अनंत करोड़ों जन्मों के सब कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके दर्शन हुए। तो क्या योग्यता थी दर्शन करने की, हाँ हमारी क्या योग्यता, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है क्या मिल सकते हैं हम लोग, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन है। तो ये श्राप की वजह से, मतलब जीव गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, संत लोग उसको श्राप देने के नाटक से उन पर कृपा कर देते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं। तो अगासुर को श्राप दिया, अगासुर ये बकासुर और पुतना का जो है छोटा भाई था, बहुत भयंकर था, उसकी इतनी शक्ति थी, इतना दरारा था उसका कि ब्रह्म लोक सब लोग देवता लोग भयभीत थे उससे, इतना उसका नाम था, लोग डरते थे, कांपते थे उसको देखकर, सब भय से आक्रांत पादाक्रांत कर दिया था उसने देवता लोगों का सब साम्राज्य। तो भगवान ने, बड़ी लंबी कथा है उसके, भगवान ने उसका वध कर दिया चैत गांव में, खबर गई ब्रह्मा तक, करे वो भयंकर राक्षस था उसका वध हो गया, एक छोटे से बालक ने उसका वध कर दिया जिससे सारे देवता भयभीत है, उसके एक ब्रज के नटखट खेलने वाले बालक ने उसका वध कर दिया। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, रे कौन बालक है ये, और कहते हैं कि वो बालक भगवान है। अभी उनको भगवान की पहचान कैसी है, ऑफिस में देखा है उनको उन्होंने भगवान को, घर पे नहीं देखा है आपने, क्योंकि अफसर लोग घर पे नहीं आते हैं, बड़ा साहब जो है अफसर को घर पर नहीं बुलाता है, ऑफिस में बुलाता है, वहां पर काम करते हैं उनसे। तो ब्रह्मा जी ने केवल ऑफिस में भगवान का दर्शन किया है विष्णु के रूप में, हाँ ये जो द्विभुजा वाला बालक है छोटा सा, मुरली बजाता है, जंगल में खेलता है, हाँ वनमाला पहनता है, वो कहते हैं वो भगवान है। अच्छा तो उनको मिलने आए, देखेंगे कौन है ये, और थोड़ी परीक्षा भी कर लेते हैं, अगर वास्तव में है तो पता चल जाएगा है कि नहीं। वे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगासुर को मारकर भगवान जो है, वो सब बालक लोग हैं ना, ऐसे ये डंडी होती है ना, डंडी ये डंडी ऐसे कंधे में पकड़ते हैं ना, दो तीन डंडियाँ होती हैं उनके पास, एक लकुटी होती है, एक गाय चराने की होती है, एक ऐसे ही चलने की होती है, ऐसे ही कंधे पर रखते हैं, कंधे पर लटकर उसको जो है भोजन बांधते हैं, मम्मी उनकी जो माताएं हैं वो सब भोजन उनको बांध के कपड़े से लटकाती है और ऐसे कंधे पे लेके चलते हैं गाय चराते चराते। ठाकुर जी कहते चलो आओ बैठो, जमुना का किनारा है, इतना सुंदर वर्णन किया है आचार्यों ने, संक्षिप्त में करते हैं आपके लिए, जमुना के अंदर कमल खिले हुए हैं, हाँ बहुत सुंदर हवा आ रही है, वो हवा क्या कर रही है, कमल की खुशबू को साथ ले आ रही है। और जमुना किनारे में ऐसा होता है, आपको सब पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी जलाशय होता है ना, उसके कुछ 4-5 फीट तक बाष्प होता है उस जल का, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, उसके 4 फीट तक बहुत सुंदर बाष्प होता है उसका। तो बाष्प है उसके अंदर कमल की पुकेसर की खुशबू है, तो बाष्प को और सुंदर खुशबू को लेकर हवा आ रही है और वो भगवान और सखाओं के शरीर को स्पर्श कर रही है, बड़े ठंडक का वातावरण निर्माण है, सब जगह वो खुशबूदार हवा बह रही है और फूलों के पुकेसर, फूलों की खुशबू और बाष्प की ठंडक सब लेकर वातावरण को प्रसन्न कर रही है। ठाकुर जी कहते देखो कितनी बढ़िया जगह है, हम यहीं बैठेंगे, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, सघन वृक्षावली है, उनका छाया है, ठंडक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रेममय जगह है, हम लोग यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर हम अपना भोजन करेंगे। सब लोग अपना अपना सिदौरी जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको आप, गांठ को, हाँ पोटली, पोटली को खोल लेते हैं और सबके अंदर यही इच्छा है कि अरे मेरे घर से जो आया है मैं पहले ठाकुर जी को दूंगा, मैं पहले गाना को दूंगा। तो ये कोई लड्डू निकाल रहा है, कोई कलौंजी निकाल रहा है, कोई चंद्रकला निकाल रहा है, हाँ सबसे मुंह में पानी निकल रहे हैं, सुनने वालों को भी और बोलने वाले के भी, ऐसे ऐसे व्यंजन जो बड़े प्रेम से उनकी माताओं ने, गोपांगनाओं ने बनाए हैं, सब सब निकालते हैं और कौन सा आइटम बढ़िया है उनको भी पता नहीं है क्योंकि उन्होंने बनाया थोड़ी है, तो वो खा रहे हैं उसको और बोले ये बहुत बढ़िया, अरे कन्हैया इसको खा लो पहले, अरे ये इसको खा लो, अरे ये इसको खा लो, अरे ये बर्फी खा लो, अरे संदेश खा लो, ये खा लो, सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठाकुर जी भी अपना आगे कर रहे हैं उनको। बड़ा सुंदर दृश्य है और वर्णन आता है कि किसी ने कमल दल के पत्ते लिए, किसी ने कदम के पत्ते लिए, किसी ने अपने जंगा पर रखा, किसी ने जमीन पर रखा, किसी ने पत्थर पर रखा, किसी ने हाथ में रखा, सब जगह रखे उन्होंने ठाकुर जी को परोसना शुरू किया। और ब्रह्मा जी का अनुभव क्या है, ब्रह्मा जी का अनुभव है कि हजारों मंत्र बोलने के बिना भोग लगता ही नहीं उनके पास, है ना। ओम सहस्त्र वीर्या सहस्त्रपाद, ऐसे बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं पुरुष सूक्त वगैरह वगैरह, तब जाके भोग लगता है और बहुत देर के बाद प्रसाद मिलता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसे मुंह में से निकल रहा है आधा वो जूठा खा रहे हैं और वैसे भोग लग रहा है, मतलब कैसे भगवान हो सकते हो। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बिना छुए तो देखे भी देखते भी नहीं उसको, पहले भोग लगाते हैं, बंद करके जाते हैं, सूरज का किरण भी नहीं करना चाहिए उसके अंदर, कोई जानवर का भी दर्शन नहीं होना नहीं चाहिए उसको, है ना, और तब उसको भोग लगाते हैं। तो कोई देख लिया कुत्ते वित्ते तो फेंक देते हैं और नया भोग लगाते हैं और तब जाके बड़े नियम से वापस आता है, तब हम उसको ले सकते हैं आस्वादन उसका प्रसाद के रूप में। यहाँ पर तो झट मंगनी पट से आए, खोला मुंह में डाला आधा खाया अच्छा लगा, ये लो ठाकुर जी खाओ, वो भी खा रहे हैं बड़े चाव से, वो भी किसके मुंह से छीन रहे हैं, खुद भी किसके मुंह से निकाल के दे रहे हैं, वो जिसको नहीं दे रहे हैं, अरे ये देख रहे हैं क्या हो रहा है ये सब। कौन से लोग में आ गया भाई ये। नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो नटखट वाला खेलने वाला है। और उसके अंदर क्या होता है, अरे वहां से मधुमंगल आ रहा है, ब्राह्मण का बालक है, बड़ा पेट वाला है, बड़ा मोटा है, लड्डू खाने में एक्सपर्ट है, उसके बाद से लस्सी का बड़ा पात्र है और वो घटाघट लस्सी पी रहा है, देख रहा है सब लोग बांट के खा रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा अंदर तो सबको बांटना पड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसलिए वहीं पर लस्सी पी रहा है, घटाघट पी रहा है और वो आखिरी घूंट जो है उसे गाल में जमाया हुआ है और कन्हैया देख रहा है, अरे देखो मधुमंगल अकेले अकेले छुप छुप के लस्सी पी रहा है, सब लोग झाँकते झपक के भागते हैं और गाल से में दोनों गाल में गुलचा लगाते हैं उसके, वो लस्सी बाहर निकलती है उसके मुंह से और तुरंत भगवान उसको ऐसे हाथ में अंगूल अंजन बनाते हैं और वो लस्सी को पीते हैं। कौन सी लस्सी को, मटके वाली नहीं, जो गुलचा मारने के बाद में उसके मुंह से धार निकली है ना, वो जो पावन माल है उसको पी रहे हैं वो। ये तो हो ही नहीं सकते भगवान, लेकिन सुन के तो आया होगी ठाकुर जी हैं ये हमारे, चलो कुछ उसके कसौटे करते हैं, अगर निकले तो अच्छा ही है भगवान तो वंदन कर लेंगे उनको। तो ये इतना आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि सब लोग मग्न हैं उसके अंदर, एक दूसरे को बड़े प्रेम से प्रेम का भोग देने में सब लोग व्यस्त हैं एकदम। उतने में किसी को ध्यान आ रहा है हमारे बछड़े कहाँ गए, ठाकुर जी कहते हैं इनको कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो ऐसे ही बांध दो और छोड़ दो, बड़ी अच्छी घास यहाँ बछड़ों को है, वो खाते रहेंगे, हम लोग भी अपना खाते रहेंगे। अचानक उसको याद आता है बछड़े कहाँ हैं, ठाकुर जी देखते हैं कोई बात नहीं, ठाकुर जी का कैसा रहता है, अपने सखाओं के भक्तों के आनंद में वो बाधा आने चाहते हैं, खुद बाधा लेंगे लेकिन उनमें बाधा नहीं देंगे, बोले आप लोग आनंद में भंग मत करो मैं जाता हूँ, हाँ देखो सब सृष्टि के मालिक है ये, सब सृष्टि के मालिक है, भक्तों का आनंद इतना चाहते, भक्तों का इतना प्रेम करते हैं, मैं कहते तुम बैठो आप लोग अपने भोजन के आनंद के अंदर बाधा मत लाओ मैं जाता हूँ, नौकर बनते हैं उनके वो। मैंने क्या कहा था कल आपको, भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं। हम लोग कैसे कहेंगे, अरे चपरासी इधर आओ, वो देखो काय किधर गई है, लुटके लाओ, इधर आओ पानी लेके आओ, है ना, सबसे निम्न जो आदमी है उसको भेज देते हैं। और यहाँ पर सबसे निम्न कौन बन रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बन रहे हैं, सबसे निम्न बन रहे हैं, बोले तुम बैठो मैं जाता हूँ। जाके देखते हैं कहीं पैर के निशान नहीं है बछड़ों के, समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा की करतूत है, ब्रह्मा जी ने उनको सबको उठा लिया है, सम्मोहित करके गुफा में बंद कर दिया है। फिर ये उठते हैं जाते हैं ढूंढने के लिए, जैसे ठाकुर जी उठ के चले जाते हैं सारे बाल बालों को भी उठा लेते हैं ब्रह्मा जी और सम्मोहित करते हैं, मतलब हिप्नोटाइज कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, गुफा में बंद कर देते हैं बछड़े और बाल बाल सब बंद। भगवान लौट के आते हैं तो क्या देखते हैं, बछड़े भी गायब, यहाँ आते तो बाल बाल भी गायब, ठीक कोई बात नहीं। भगवान कभी डिस्टर्ब नहीं होते किसी चीज से, मतलब कोई बात नहीं, तुरंत सारे ग्वाल बालों को बछड़ों को उत्पन्न कर लेते हैं अपने शरीर से, और कैसे, वैसे ही जैसे वो थे, जैसे उनकी माता उनका श्रृंगार करते, जैसे हमारी यहाँ पर माता बैठी ना, देखो किसी बच्ची को हेयर स्टाइल डिफरेंट है, किसी को अलग से हेयर स्टाइल बनाया है ना, तो वो अपना अपना तरीका है कि ये बच्चे को ऐसे करना है हेयर स्टाइल, वो उसमें ऐसे करना है, ये बच्चे को ऐसे बनाना है, हाँ ऐसे हर माता अपने ग्वाल बाल को अपने ढंग से श्रृंगार करती थी, किसी के यहाँ पर बांसुरी है, किसी की इधर बांसुरी है, किसी भी यहाँ पर जो भैंसा होता है ना वो बजाने वाला, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? हाँ बिगुल होता है ना, वो यहाँ पर लगा हुआ है, किसी का हाथ में है, किसी के कंधे पे है, किसी की यहाँ पेंसिल लगी हुई है, किसी को यहाँ कान पे फूल लगाता है, किस ऐसे अलग अलग श्रृंगार है सबका। वैसे हुबेहूब भगवान सब ग्वाल बाल के रूप के अंदर विस्तारित हो जाते हैं, अपने आप को बना देते हैं, यहाँ तक कि नहीं हर बछड़ा भी बन जाते हैं, वैसे ही जैसे उसके माता के घर में भेजा है वैसे बन जाते हैं, और पूरी मंडली पूरा तैयार हो जाती है, वैसे ही गीत गाते 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 घर चले जाते हैं। क्योंकि मन में उनको चिंता है अगर मैं अकेले चल जाऊंगा तो मेरी मैया तो खुश हो जाएगी मैं आ गया, लेकिन सारे जो बालक है उनकी मैया बोलेगी अरे हमारे बालक कहाँ गए, बालक तो नहीं गाय भी बछड़े भी खत्म हो गए हमारे, किधर है? तो क्या जवाब देंगे वह? आप बोलेंगे उसमें बलराम जी कहाँ थे? बलराम जी थे नहीं उसके अंदर, केवल कृष्ण ही थे, क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, इसलिए रोहिणी मैया ने कहा कि आप तुम जाना नहीं आज, आज तुम्हारा जन्मदिवस है, आज तुम्हारा शंख से स्नान होगा, फिर तुम्हारे हाथ से गाय का दान होगा ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे आशीर्वाद देंगे, ये जन्मदिन मनाने का तरीका है। हाँ हम लोग क्या गिफ्ट लेते हैं ब्रज में, गिफ्ट देते हैं जन्मदिन के ऊपर, संतों के आशीर्वाद चाहते हैं उसमें, तो इसलिए बलराम जी घर पे रहते उस दिन, इसलिए बलराम जी इसमें नहीं थे। तो कृष्ण भगवान सभी ग्वाल बाल बन के घर लौट के आते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, और उस दिन सब लोग एकदम अजीब आनंद का अनुभव करते हैं। अरे सब ब्रजवासी गण जो है वो कृष्ण भगवान को अपने बालक से अधिक प्रेम करते हैं, सब गायें जो अपने बछड़ों से कृष्ण भगवान को अधिक प्रेम करती हैं, तो सबके मन में इच्छा है कि कहीं हमारा बालक कभी कृष्ण बन जाए तो कितना अच्छा है, कृष्ण हमारे स्वयं बालक बनेंगे, तो कोई ईर्ष्या नहीं है, अपने बालक को कोई घृणा नहीं करते या कोई नीचा नहीं मानते, उन पर भी प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण पर उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने बालक से भी। तो उस दिन जो उनको कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव था मन में, वो अनुभव वो अपने बालकों को मिलने पर करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण ही थे वो, तो उस दिन अनोखा प्रेम उनको अपने बालक के प्रति अनुभव हो रहा है, सब ग्वाल बाल बड़े हैं जो माताएं हैं सब लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अरे मेरा सुदामा तो कृष्ण ही है, मेरा मधुमंगल तो कृष्ण ही है, मेरा अर्जुन कृष्ण ही है, मेरा रक्तक तो कृष्ण ही है, ऐसे अश्रुओं की धारा बहती है उनकी आंखों से, रोमांच होते हैं, ऐसे गले लगाते हैं, चुम्मा लेते हैं उनको, सर को सूंघते हैं बालों को, और फिर अगले दिन उनको कृष्ण भगवान गोवर्धन लेके जाते हैं। तो गोवर्धन में क्या होता है, जो बड़ी गायों को लेकर बड़े ग्वाल बाल चराते रहते हैं गोवर्धन के ऊपर, और छोटे ग्वाल बाल जो है छोटे बछड़ों को लेकर किनारे से आते हैं, तो ऊपर से उनकी माताएं उनको देखती है तो ऐसे भागते हैं ऊपर से पहाड़ के नीचे, कितना डिफिकल्ट होता है वो, डेंजरस होता है, अगर आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए कहो तो इतना डेंजरस नहीं है, पहाड़ से उतरना ज़्यादा डेंजरस होता है, तो पहाड़ के उतार में पूंछों को उठाकर कानों को उठाकर भाग रहे एकदम तेजी से, तो ग्वाल बाल तो हैरान हो जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, अरे कैसे पकड़े उनको, ऐसे तेजी से भाग रहे नीचे की ओर, फिर जाकर अपने अपने बछड़ों को जाकर उतना चुभने लगते हैं, इतना चाटने लगते हैं, गले लगाते हैं, इतना दूध की धार निकलती है उनके थनों से, तो ग्वाल बाल आश्चर्य करते हैं, अरे ये क्या चीज़ है इतना प्रेम, वो तो रोज दिखते हैं, रोज यहाँ पर चल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर गायें चल रही हैं, ठीक है अपना अपना काम कर रहे हैं, आज को अजीब ही दर्शन हो रहा है, और उस दिन बलराम जी थे, और बलराम देख रहे हैं, अरे ये तो अजीब प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या रहस्य है उसका? ठाकुर जी को कान में पूछते हैं, क्या भाई कन्हैया क्या बात है ये? तो संक्षेप में कन्हैया जी सब बताते हैं बात, क्या क्या बात हुई, पर मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो सब, ये सब ग्वाल बाल और सब गजरे तुम ही हो, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही थी, ये सच था, हाँ मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसे एक साल बिताते हो, और एक बीच में बड़ी बढ़िया घटना होती है, जिन गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए, है ना, पूर्णमासी ने तो प्लान सब फेल कर दिया उनका, कि वो स्टार अच्छे नहीं है, वो सब ग्रह अच्छे नहीं है, अभी विवाह करना अच्छा नहीं है, तो पोस्टपोन कर दिया था उनका विवाह, तो उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था कि हमको कृष्ण के पति रूप में हमको स्वीकार होना चाहिए, हमको प्राप्त होने चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बाबा को बोला, बाबा बढ़िया अभी सब सर तारे सितारे जो है ग्रह जो है बढ़िया जगह पर है, अभी योग बढ़िया है, अभी विवाह कर लो सबों का, तो वो जानते हैं ना स्वयं सब ग्वाल बाल बने हुए हैं, तो योग योग्य पत्नियों को कन्याओं को देखकर गोपियों को देखकर सबका विवाह हो जाता है ब्रज में। इसका मतलब क्या है, सभी गोपियों का जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी, तपस्या किया था, कात्यायनी व्रत किया था, वह सभी गोपियों का विवाह किससे होता है, कृष्ण भगवान से हो जाता है, और एक साल सब अपने पति के रूप में कृष्ण भगवान के साथ में संग करते हैं एक ही साल, क्योंकि ब्रह्मा का एक क्षण जो है वो एक साल का होता है। उनको गुफा में बंद करके अपने एक क्षण के बाद वो लौट के आते देखने के लिए, क्या मजा चल रहा है यहाँ पर, देखो जरा, देखता हूँ क्या चल रहा है। तो इस बीच में एक साल गुजर गया, गोवर्धन मिले गए, उसकी लीला भी हो गई, सब घर में रोज अनुभव कर रहे हैं अपने भगवान का, गोपियां पति के रूप में उनका संग ले रहे हैं। हाँ, ऐसा बड़ा अनोखा अनुभव था ब्रज में उस साल। एक क्षण के बाद, यहाँ के एक साल के बाद जब लौट के ब्रह्मा जाते तो क्या देखते हैं, उसी किनारे में उसी जगह पे सब ग्वाल वाल बैठे हैं, अपने अपने झूठन भगवान को खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कोई भगवान किसी के जंगा पर सो रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, कोई हवा दे रहे हैं, कोई गा रहे हैं गीत, कोई नाच रहे हैं, कोई शाखाओं पर कूद रहे हैं बंदरों की तरह। अरे सब यही के यही है, तो मैं छोड़ के आता, वो कौन थे? नहीं, वो शायद बड़े विभूति होंगे, योगी होंगे, शायद वहाँ सम्मोहन को छोड़कर वापस आ गए होंगे। तो कुछ जगह पर ऐसा वर्णन किया है कि वो एक ही बार देखा और पूर्णतः भ्रमित हो गए, और कुछ जगह और देखा दिखा है कि वो गुफा में गए तो वहां पर भी सोया वो पाया बालकों को बच्चों को, फिर लौट के आए देखा तो यहाँ पर भी खेलते हुए पाया, फिर गए फिर आए फिर गए फिर आए, गुफा में भी है बंद है यहाँ पर भी खेल रहे हैं, तो एकदम भ्रमित हो गए, पूरी तरह से भ्रमित हो गए। अब ये भ्रमित कौन हो रहे हैं? आप और हम नहीं भ्रमित हो रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि है, हाँ परम बुद्धि पूरे विश्व की ब्रह्मा की है। ऐसे कहते हैं कि उनका शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है। जैसे आपका शरीर में एक जगह दिमाग है, एक जगह पर आते हैं, एक जगह पर हार्ट है, एक जगह पर मसल है, अपनी में जगह पर सब है ना, अवयव। लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि है, मूर्तिमान बुद्धि है वो, मतलब परम बुद्धि है, जिस बुद्धि के आधार पर भगवान से व्यंजनों को लेकर, भगवान से तत्वों को लेकर वो सब शरीर का निर्माण करते हैं। तुम्हारे हमारे शरीर का निर्माण जो है भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ से करते हैं। कैसी बुद्धि होगी ब्रह्मा जी, सोचो आप, कैसे एक भी कोई जीव समान नहीं है, अरे जुड़वा भी समान नहीं है, दो जुड़वा भी भाई समान नहीं, जो जुड़वा भाई बहन भी समान नहीं है, हर अलग अलग है, हर एक का भोग अलग है, अलग का जीवन अलग है, हर एक के अनुभव अलग है, हर एक के पाप पुण्य का हिसाब किताब अलग है, ऐसे उनका निर्माण है, एक भी कोई सिमिलर नहीं है। ऐसी बुद्धि वाले ब्रह्मा जो है उनकी बुद्धि भी पूर्णता भ्रमित हो जाती है, ये क्या चक्कर है, यहां तक भ्रमित हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन है, कौन है बालक, ये क्या कर क्या रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो भगवान जी जो परम माया है, ये ब्रह्मा जी की माया जो भगवान ने निर्माण करने का प्रयास किया ना, ब्रह्मा जी ने अपनी माया का प्रभाव डालने का प्रयास किया, उनको मोहित करके भगवान को भ्रमित करने का प्रयास किया, वही ब्रह्मा जी के माया को भगवान ने अपनी परम माया से धो डाला, परास्त कर दिया उसको, और बिल्कुल पागल जैसे हो गए वो, और उनके पागलपन में और भ्रम में और भर डालने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, वो सबको भगवान ने एक क्षण के अंदर एक ही झटके में विष्णु का रूप दे दिया, चार भुजा वाले विष्णु बन गए वो, हजारों ग्वाल बाल विष्णु बन गए, हजारों बछड़े विष्णु बन गए, और एकदम पूरी भ्रम में उनको पागल कर दिया पूरा। और आगे पागल कैसे कर दिया, हर एक ब्रह्मा हर एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवता का एक सेट है जो उस ब्रह्मा उस विष्णु का पूजन कर रहा है, उस विष्णु का गौरव कर रहा है, उस विष्णु के लिए गीत गाए जा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, इंद्र जी खड़े हैं, शंकर जी भगवान खड़े हैं, पांच मुख वाले, अब ब्रह्मा जो है चार मुख वाले, आठ मुख वाले, दस मुख वाले, हजार मुख वाले, ऐसे अलग अलग ब्रह्मा जी एक एक सेट में विराजमान है और अपने आप को भी देख रहे हैं उसके अंदर। हाँ, अचानक सब ग्वाल बाल गायब हो जाते हैं, और वैसे अकेले भगवान एक हाथ में चावल दही का मिश्रण फूल के साथ में, एक हाथ में दही लेकर ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए मेरे बालक, सब विष्णु खत्म हो गए। अरे यही तो है वो परम ब्रह्म जो मेरे आराध्य दैवत है, यही है। हाँ, तो इस तरह से वो समझ जाते हैं, देखो ना, बालक तो नहीं है, छोए हुए हैं, वो यहाँ उपस्थित है, उसके बाद वो विष्णु बने हुए हैं, उसके बाद में उसका 33 करोड़ देवताओं का पूजन हो रहा है, एक एक विष्णु का, एक एक साथ में अनंत हजारों विष्णु, हजारों 33 करोड़ के सेट्स, और बीच में वो कन्हैया कैसी माया है उसकी। हा? तो फिर वो उसके चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी के चार सर थे, उस पर बहुत ही मूल्यवान मुकुट थे, क्योंकि वो परम देवता है ना सबका, उसका ऐसे हीरे और जवारा ऐसे मणि लगे हुए थे, इसके प्रकाश से भी ऐसे नजारा बनता था मोहित करने वाला। वो चार मुकुट के साथ अपने शीश को, चारों मुकुट के चारों क्या कहते हैं शिखर को उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, तो वो चारों मुकुटों से जितने मणि लगे हुए थे वो मणि का प्रकाश भगवान के चरणों पर गिरा, अभाव उसकी, लेकिन भगवान के चरणों से जो नाखून से जो दिव्य किरण निकलते हैं उन किरणों ने उन सुंदर मणियों के प्रकाश को परास्त कर दिया, क्योंकि भगवान के चरण जो है उनके नाखूनों से अनंत किरण निकलते हैं जो सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, जिसमें सृष्टि का निर्माण होता है। तो योगियों को, ध्यानियों को, तपियों को उसमें से एक किरण में नजर नहीं आता है, तपस्या हजारों साल जन्म करने के बाद भी। तो ये ऐसे दो आभाओं का मिलन हुआ भगवान के चरणों में, लेकिन एक आभा ने दूसरे आभा को परास्त कर दिया। लेकिन बीच में क्या हुआ, उस समय भगवान के चरणों को स्पर्श करने के बहाने ब्रह्मा जी के सर को ब्रजरज का स्पर्श हुआ, तब तक भगवान ने उनको माफ नहीं किया। जब ब्रजरज में वो नतमस्तक हो गए तब पर तभी उन पर कृपा हुई है भगवान की। तो ब्रजरज का भी महत्व इस प्रथा में आता है, वो बहुत गिड़गिड़ाए भगवान के सामने, बहुत उन्होंने याचना किया, बहुत प्रार्थना की, लेकिन जब ब्रजरज में नतमस्तक हो गए तब उनको माफ किया गया, और सही पश्चाताप के भाव से वो वहां पर, क्या भाव था उनका कि मैं तो ब्रह्मा बन के आया था इसलिए इनकी मेरी मालिक की मैंने कसौटी करने का प्रयास किया, अगर कोई अकस्मात जीव होता तो मैं तुरंत भगवान के चरणों में लीन हो जाता, लेकिन चूंकि ब्रह्मा था इसलिए मेरे ये गड़बड़ मैंने किया पूरा, मतलब सारी गड़बड़ सारा रोग जो है मेरे अधिकार का है, मुझे अधिकार नहीं चाहिए। अरे भगवान की लीलाओं में सहायता करने का भाग्य प्राप्त था मुझे, वो छोड़कर भगवान के भक्तों का बिछोड़ कर दिया मैंने, इसलिए इंद्र से अधिक ब्रह्मा जी से भगवान क्रोधित थे, क्योंकि इंद्र ने सबको मिला दिया ना, सब रसों के भक्तों के लिए एक जगह मिला दिया उन्होंने, 7 दिन 7 रात के लिए सान्निध्य का आनंद दिया उन्होंने, लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने ब्रह्मा जी ने, सबको अलग कर दिया, जितने भी प्रेम भक्त हैं जिनके प्रेम के लिए वो लालायित रहते हैं वो सबको जुदा कर दिया उन्होंने, सम्मोहित करके गुफा में बंद कर दिया, अकेला कर दिया भगवान को। लेकिन फिर भी जब इस चौमुहा जगह पर उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया है, सही नाम की जगह पर उनको यह अनुभूति दी, अरे गड़बड़ हो गया मैंने, ये जो एहसास था ना अनुभूति ये सही जगह पर हुई है। परकम के जगह पर उन्होंने बछड़ों को चुराया, आगे जाके परकम जगह है, कभी ढूंढ के निकालेंगे उसको, वहाँ परीक्षा किया भगवान का उन्होंने, है ना परकम नाम की जगह, वहाँ पर उन्होंने वो अपनी को अपने बल को विद्या को लगाकर वो बछड़ों को चुराया और सम्मोहित कर दिया उन्होंने। लेकिन इस जगह पर भगवान के सामने उन्होंने प्रार्थना किया, पश्चाताप दग्ध हृदय से प्रार्थना किया, तब भगवान से उनको माफी मिली है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अपराध ऐसी वस्तु है, अपराध बहुत भयंकर वस्तु होती है, अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए, और सबसे भयंकर अपराध वैष्णव अपराध है, किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए कभी भी। एक बार भगवान का अपराध करेंगे तो भगवान माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान पर किया हुआ अपराध जो है वो भगवान माफ कर देते हैं, नाम के बल के ऊपर भगवान का किया हुआ अपराध भी माफी हो जाती है, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किया तो नाम भी कुछ नहीं कर सकता है। पश्चाताप दग्ध हृदय लेकर उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा और सच्चे भावना से उनसे माफी मांगनी होगी, ऊपर ऊपर से नहीं, कहा गया इसलिए नहीं, क्योंकि भक्त माफ करेगा भगवान नहीं माफ करेंगे, दंड देंगे उसका, भगवान को अपने भक्त बहुत बड़े प्रिय होते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान कीजिए, हम सब लोगों ने अनंत अपराध किए हैं, इसलिए अभी भी हम पृथ्वी पर बड़े गर्व से मनुष्य का शरीर प्राप्त करके दौड़ रहे हैं और भी अपराध करते जा रहे हैं, स्वार्थ तो हमारे अंदर है ही, धन की अभिलाषा भी है, पद भी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शरीर का भोग चाहते हैं, कुछ झूठ वूठ बोल लेते हैं और कुछ चीटिंग भी कर लेते हैं, किसी का पैसा यहाँ से वहाँ हरा परे कर देते हैं केवल इंद्रिय भोग के लिए। संत लोग कहते हैं कि इस शरीर को भोग देने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं इस शरीर को सुख देने के लिए, और उस चक्कर के अंदर बहुत दूर भगवान से चले जाते हैं, भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं इस चक्कर के अंदर, इस शरीर को तुष्ट करने के चक्कर में। इसलिए समय पर जगना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, किस लिए प्राप्त किए, शरीर का भोग तो अनंत योनियों में, कीटक के योनि में, मछली की योनि में, पंछी की योनि में, पेड़ की योनि में, जानवर की योनि में, बहुत ज्यादा भोग लिया हम लोग ने, जितना भोग इस शरीर में हम लोग नहीं ले सकते, जो हाथी घोड़ा संभोग में आनंद लेते हैं मनुष्य शरीर में नहीं मिल सकता आपको, जो कबूतर सुअर सेक्स करने में आनंद लेते हैं उतना मनुष्य नहीं ले सकता है कभी भी, जितना हाथी खा सकता है और खाने का आनंद ले सकता है उतना हम लोग नहीं खा सकते ना उसका मजा ले सकते हैं। हर चीज भी जानवर का जोरी जो है वो श्रेष्ठ है हर भोग लेने में, लेकिन थोड़ा मनुष्य हमको शरीर इसके लिए दिया है, हाथी जैसा खाने के लिए और कबूतर जैसा सेक्स करने के लिए और सिंह जैसे शक्तिशाली बनने के लिए और घोड़े का शक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ी दिया है हमको। ये तो बुद्धि वाला शरीर है, सद असद विवेक बुद्धि वाला शरीर है ये, जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, वो शरीर को प्राप्त करके हमको यहाँ पर रहने का मौका मिला है। तो यहाँ पर रहकर भी अगर हम शरीर में रहकर भी अगर उसी भोगों को प्राप्त करेंगे जो जानवरों को भी उपलब्ध है तो फिर हमारे हाथ से अपराध होते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। हाँ, मनुष्य जीवन में भी कुछ कुछ सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज जलेबी खाया आनंद मिला, कल वही जलेबी खाया दस्त हो गए, कोई गारंटी नहीं है ना वो कि वही मिलेगा, उसी दुकान से उसी दिन से उसी आचार्य से उसी रसोईया से वही रस जलेबी को खाएंगे तो कल आनंद मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं होती है। कल उसके आपके शरीर की अवस्था कैसी है और कैसे वो स्वीकार करेगा उसको, क्या उसका रिएक्शन होगा और कैसा उसका परिणाम होगा, नो गारंटी। कल नया पैंट बनाया आपने और पहना तो इतना आनंद मिला आपको, आज वही पैंट पहना तो उतना कल का इतना आनंद नहीं आएगा और परसों और कम आएगा, दस दिन के बाद तो और कम आएगा, एक साल के बाद भी खत्म हो जाएगा, वो नया पैंट की इच्छा हो जाएगी आपके मन में। ये हमारे जीवन का लक्षण है। तो इस शरीर को तुष्ट करने के प्रयास में बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत लोगों को दुखी करते हैं हम लोग, बहुत लोगों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, यातना देते हैं, बहुत लोगों को नुकसान भी कर देते हैं, बहुत लोगों को आतंक भी कर देते हैं, हाँ उनको कष्ट पहुंचाते हैं, अपने शरीर को अपने मन को अपने बुद्धि को अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए। और इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हमेशा भी उदाहरण देता हूँ, आजकल एक बार हमने अगर समझो बहुत बढ़िया खाना खा लिया, हाँ मिठाई भी खा लिया, पकौड़े भी खा लिए, फर्स्ट क्लास खा लिया, उसमें जितना कैलोरी हमने अंदर डाला ना, जो 500 कैलोरी डाल दिया हम जो एक्स्ट्रा शरीर के अंदर, उसको अगर आपको खर्च करना है तो आपको 5 दिन आधा घंटे बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा 5 दिन के लिए, तब जाकर एक दिन का जो आपका खाया हुआ माल है वो उसका चर्बी खत्म हो जाएगा। तो वैसे भोग का भी ऐसा ही है, भोग लेने में बहुत कम समय लगता है, भोग का परिणाम भोगने में बहुत ज्यादा समय लगता है कि नहीं? आपने जलेबी खाया कितने मिनट में खाया? 2 मिनट में 10 जलेबी खाया, 10 लगे तो 2 दिन 24 घंटे भागते रहेंगे। उसका आनंद जो है इतना सा है, उसका परिणाम जो है बहुत लंबा है, होता है कि नहीं? कई जगह जाके आपने बढ़िया से एकदम पानी पूरी खा लिया, हाँ भैया के पास में जाके गोल गप्पा खा लिया, तो टाइफाइड हो गया तो कितना दिन बिस्तर में पड़ेंगे? 17 दिन के बाद में बुखार आएगा और 23 दिन बिखार बिस्तर में पड़े रहेंगे आप। आनंद कितना मिला? एक गोलगप्पा एक बार खाने का आनंद मिला आपको। ये दुनिया का सच्चाई है, सत्य यही है। उसी तरह से शरीर का जो भोग हमने प्राप्त किया है उसका अनुभव आपको कुछ समय के लिए मिलेगा, लेकिन जो भोग लेने के लिए जो इतना पाप किया है, जिसको चीटिंग किया है, उसका परिणाम आपको बहुत लंबा भुगतना पड़ेगा। जब कोई चोर चोरी करता है ना, 500 रुपए का जेब मार लिया उसने, जो गया होटल में पांच कोई बड़े होटल में गया, मसाला डोसा मंगा लिया, वड़ा मंगा लिया, पकौड़े मंगा लिए, लड्डू मंगवा लिए, आधा घंटे में 500 रुपए खत्म हो गया। और जेल कितने दिन की होती है? 5 मिनट की जेल नहीं होती है उसको, जेल 6 महीने की होती है। हाँ, वो 500 रुपए का भोग कितना मिला उसको? कुछ समय के लिए। सजा कितनी मिली? 6 महीने की। उसी तरह हिसाब किताब होता है। आप अपराध करेंगे, उस अपराध करने से जो आपको सुख मिलेगा, थोड़ा बहुत भोग मिलने का प्रयास करेंगे, वो कुछ समय का होगा, अपराध की सजा बहुत लंबी होगी। इसका डिजाइन भगवान ने ऐसे बनाया है दुनिया में, क्योंकि ये जगह शरीर के भोग के लिए नहीं बनाई गई है, इसलिए शरीर का भोग का अनुभव कम, अपराध की सजा लंबी बनाई गई है, ताकि हम लोगों को यह एहसास हो जाए कि ये भोग लेने की जगह नहीं है। जिस जगह पर भोग लेना मना है उस जगह भोग लेंगे तो बहुत ज्यादा दंड होता है। कैमरा की कीमत कितनी होती है? 18,000 रुपया लिखा है। यहाँ फोटो लेना मना है फिर भी हम फोटो लेते हैं तो क्या होता है? 18,000 का कैमरा जो है उसको जब्त किया जाता है, जिसको आपने बहुत मेहनत से बहुत कमाई किया था, बहुत दिन के बाद में खरीदा था उसको, लेकिन एक जगह पे एक फोटो निकालने से वो कैमरा जब्त करके जमा हो जाता है तिजोरी के अंदर। मतलब सुख कम कष्ट ज्यादा। तो हमने बहुत सारे ऐसे अपराध किए हैं जिसकी बहुत लंबी लंबी सजा हम लोग भोग भी रहे हैं, आगे भी भोगते जाएंगे और पीछे भी भोगा है, इसलिए अभी ये होश में आने की जगह है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सही पश्चाताप किया है। इसलिए हम सबको यहाँ पर बैठकर जितने भी अपराध हमने किए हैं, जिनको हम जानते हैं कि हमने किए हैं, जितने भी किए हैं हम जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे अपराध अनजाने में करते हैं हम लोग, भोग के वेग के अंदर क्या करते हैं समझ में नहीं आता है हमको, किसको कुचल रहे हैं, किसको दुख दे रहे हैं, इतना भोग का वेग होता है। तो कई सारे अपराध अनजाने में किए हुए हैं, कई सारे अपराध जानबूझ कर किए हुए हैं, सारे अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए हृदय से। और अपराधों की क्षमा करने का और भी एक रहस्य है भगवान का, आगे अपराध नहीं करेंगे तो सारे पिछले अपराध माफ हो जाएंगे। जो आज याद है और आज याद नहीं है, तो कई जन्मों के याद नहीं है और आज जन्म के भी कुछ याद नहीं है, कुछ याद है, वो सारे अपराध के गिनती में आने वाले, अकाउंट में आने वाले जितने भी अपराध है, वो सारे अपराध माफ हो सकते हैं अगर हम वादा करते हैं कि हम आगे वो नहीं करेंगे। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बचाइए, हम बड़े अनजान, बड़े भोलू और बड़े बुद्धू है आदमी, बड़े बुद्धिमान समझते हैं लेकिन बड़े मूर्ख हैं हम लोग, हम जानते भी नहीं कि अपराध क्या होता है, कब कब उसका अकाउंट में जमा हो जाता है। आप हमें ऐसी बुद्धि दे, सन्मति दे कि हम अपराधों से बचें, तो फिर ब्रह्मा जी का इतना पश्चाताप जो है सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी कोई अपराधी नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं भगवान, अपने बड़े बड़े अफसरों को भी उसमें लाते हैं, उनके उदाहरण से बताते हैं, देखो ब्रह्मा जी भी अपराध होके ऐसे दुखी हो सकते हैं, हम किस झाड़ की पत्ती। इसलिए भीष्म देव को यूज करते हैं महाभारत में और उल्टे पक्ष में युद्ध करने के लिए। भीष्म देव भी अगर जाते हैं पक्ष मतलब असत्य के पक्ष में तो उनका भी नाश होगा, ये दिखाने के लिए भीष्म देव को वहां पर कर देते हैं। ये भीष्म देव पापी नहीं है, भीष्म देव असत्य के पक्ष नहीं है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं हमको कि हमें कोई अहम करने की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये लोग भी जब करते हैं तो उनको वही नियम लागू होता है। तो आइए हम सब मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करें भगवान से सही हृदय से कि हमें अपराधों से मुक्त कर दें। अपराधों से मुक्त होने के लिए अपराध करने की प्रवृत्ति जो है वो नष्ट होनी चाहिए, टेंडेंसी जो है वो नष्ट होना चाहिए, और प्रवृत्ति हृदय से निकलती है, आत्मा से निकलती है, भगवान को विस्मृति होने के बाद निकलती है। भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो ये अपराध नहीं होगा, भगवान की स्मृति भी हम रहेंगे हमेशा डूबे हुए रहेंगे तो फिर हम अपराध नहीं करेंगे, हमेशा भक्तों की सहायता करेंगे, भक्तों का अपनी सेवा जो है प्रामाणिकता से करेंगे, जो धन प्राप्त हो रहा है उसके लिए प्रामाणिकता से मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे, अपना ड्यूटी ठीक से करेंगे, ईमानदार बनेंगे हम लोग, है ना, ईमानदार बनेंगे। वो प्रवृत्ति नष्ट होनी चाहिए। पेड़ को अगर काटना है तो उसको जड़ से काटना चाहिए, जमीन के ऊपर से काट दे तो फिर उसके पत्ते निकलेंगे, क्योंकि जड़ तो अभी जमीन के अंदर है उसकी। तो हमको अगर अपराध भंजन करना है तो जड़ से ये प्रवृत्ति जो बीज है, बीज बोलते हैं उसको, बीज को नष्ट करना चाहिए, अपराध के बीज को नष्ट करना चाहिए और भगवान के याचना करनी चाहिए कि हमें बचाओ, आप हमको रक्षा करो हमारी, तब जाकर हमें कोई आसरा सहारा कोई आशा मिल सकती है। तो ब्रह्मा जी के चरणों में आप दंडवत कीजिए, वो स्वयं इस नाटक के विलन बने हैं ना वो हमारे लिए, हाँ कोई जरूरत नहीं विलन बनने की, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं बढ़िया से, लेकिन इस नाटक में उन्होंने ऐसा पद स्वीकार किया, ऐसा रोल लिया उन्होंने जिसमें देखने वाले हंस सकते हैं, देखो ये देखो ब्रह्मा देखो बड़े बड़े बन के घूम रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं इनको, हाँ। तो उनके आप दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए उनको, यही ब्रह्मा जी भगवान के प्रेम में अनुरक्त होकर बरसाने में पहाड़ बने हुए हैं, हाँ यही ब्रह्मा जी है वो। 120,000 साल तपस्या किया उन्होंने, 120,000 साल तपस्या किया, 60,000 कृतयुग के मतलब सत्ययुग के पहले और 60,000 कृतयुग के अंत में एक ही अभिलाषा से कि आपके और आपके सखाओं के चरणों की धूल मुझे प्राप्त हो जाए, सखियों की, इस अभिलाषा से तपस्या किया। पहली बार तपस्या किया 60,000 साल, नो रिस्पॉन्स, फिर सत्ययुग तक पूरा अपना सेवा किया, सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया, तब जाकर कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया है, बोले जाओ वृषभानुपुर जाओ, वहां पत्थर बनो, ब्रह्मा जी को कहा पत्थर बन जाओ। हमको कोई बोलेगा पत्थर बन जाओ तो हम लोग हाँ हाँ बोलेंगे क्या, अरे अभी तो हम लोग चेतन जीव हैं, चार सर वाले, चार भुजा वाले, इतने बड़े पंडित बने हुए हैं, और बोले पत्थर बनो, बोले तैयार है तुरंत बनने के लिए, तुरंत बन गए। क्यों? कि गोपियों गोपांगनाओं की, भगवान के सखियों की चरणों की रज प्राप्त हो जाए। इसलिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आदमी जो है, नंबर वन परम ब्रह्म जो है, मतलब परम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मदेव परम बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, पत्थर बना, बरसाने में। ये हमारे लिए उदाहरण है। हम लोग छोटे मोटे चीज़ों के लिए गर्व करते हैं, अहम करते हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पद है, हम इंचार्ज है, हमारी तनख्वाह ये है, हम ऐसे दिखते हैं, हमारी तो शक्ति इतनी है, हमारा इतना प्रभाव है, इतने कॉन्टैक्ट है हमारे। हम लोग तो कुछ ही तिनके की तरह भी नहीं है, ये जुगनू की तरह भी नहीं, हम लोग कोई शक्ति नहीं हमारे अंदर, फिर भी हम गर्व करते हैं। इनको तो गर्व करने के लिए अधिकार भी है, इनके पास इतनी शक्ति है, लेकिन वो भी कहते हैं कि उतना सारा अधिकार भी बेकार है, अगर भगवान का प्रेम नहीं है तो वो सारा अधिकार भी एक क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव क्वालिटी है, एक बोझ है हमारे ऊपर, एक पतन का कारण हो सकता है वो। जैसे कहते हैं ना, जितना भारी मुकुट उतना समुद्र में आदमी मुकुट पहने हुए जल्दी डूब जाता है। वो ये समझते हैं कितना बड़ा अधिकार भी बहुत भयंकर चीज़ है, वो भी भगवान के चरणों के रच चाहते हैं। हमको तो चाहना ही चाहिए, हम तो कुछ हम तो हमारी क्या तुच्छ अवस्था है, यहाँ मांगना चाहिए उसको कि इतना सब होने पर भी आपने इतना तपस्या किया किस चीज़ के लिए, पत्थर बनने के लिए, थोड़ा हमको भी दे दो उस भावना को कि हम भी भगवान की सेवा में कुछ तुच्छ जीव बने, उनके चरणों में रज बने, उनके उनके चरणों को सुख दें। ये प्रार्थना करने की जगह है। ठीक है, श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की, श्री ब्रह्मवन की, चमुआ धाम की, धाई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।